Now we're going to read this evening, please, in Luke chapter 22.
आज संध्या के समय हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय से ध्यान करेंगे.
And in Luke chapter 22, we're going to read from verse number 14 to the end of verse number 20.
लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 24वें पद से लेकर 20वें पद तक हम पढ़ेंगे. लूका 14 पद से लेकर 20 पद तक. जब समय हुआ तो यीशु भोजन करने बैठा और प्रेरित भी उसके साथ बैठे. उसने उनसे कहा, अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा. प्याला लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो कहा, इसे लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं दाखरस नहीं पीऊंगा. फिर रोटी लेकर जब उसको धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो. जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है.
Yeah. You're very well. Thank you very much. Let me just ask you, please, brethren, to turn off your cell phones.
मैं भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने सेल फोन को स्विच ऑफ कर दे.
We're sitting here now with the word of God, and I respect you all, but I don't believe any of you are so important that you need to take a phone call while the ministry is in progress.
और हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं और मैं आपको बड़े सम्मान आपका आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि हम में से कोई भी परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर नहीं है और कोई भी जरूरत उससे बढ़कर नहीं है.
थैंक यू.
धन्यवाद.
We've turned to this passage this evening because it continues in the theme of prophecy.
इस भाग को आज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो विषय वस्तु है भविष्यवाणी उससे संबंधित है.
But it also has teaching for us in local assemblies today.
इतना ही नहीं, हमारे स्थानीय कलीसिया के संबंध में भी कुछ शिक्षाओं को हम इसमें पाते हैं.
It deals with a very important occasion when the Lord Jesus in the upper room met with his disciples for the last time.
यह उस बहुमूल्य सत्य को हमारे सामने ले आते जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस ऊपरी कमरे में कक्ष में अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया था.
एंड द लॉर्ड सेड टू देम दैट विद अ वेरी डीप डिजायर ही हैड डिजायर टू ईट दिस पासओवर विद देम.
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने मन में बड़ी इच्छा के साथ इस फसह को तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं.
नॉट जस्ट द पासओवर,
फसह को खाना ही नहीं,
दिस पासओवर,
ये फसह.
Because this Passover was going to be the last Passover.
क्योंकि यह जो फसह का जो भोजन था यह अंतिम था.
So the very fact that he has called them together into that upper room for Passover.
और ये सत्य क्यों कर प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस फसह के भोज में इस ऊपरी कक्ष में बुलाया है.
Tells us that the Lord Jesus with his disciples was looking backwards.
जिसका ये हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पिछले बातों की ओर अपने उनके ध्यान को ला रहा था.
He was looking back through time.
वो समय में पीछे जा रहा था.
He was going back to the very point some 2000 years before.
वो 2000 बरस पहले कुछ एक ऐसे घटना की ओर उनके ध्यान को ले जा रहा था.
When God by mighty power had delivered his people Israel out of Egyptian bondage.
जब परमेश्वर ने अपने सर्वशक्ति बल से अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया था.
The nation learned in that night the truth of substitutionary sacrifice.
और उस दिन इसराइल देश ने इस बड़े सत्य को समझ लिया कि हमारे बदले में कोई मरता है या बलिदान होता है उसका क्या अर्थ है.
Death had visited every home in Egypt.
और मिस्र देश के हर घर में मृत्यु आया था.
In the home of the Egyptians, the firstborn had died.
और मिस्रियों के परिवार में हम देखते हैं पहलौठों की मृत्यु हुई.
But in the home of the Israelite, the lamb had died.
लेकिन यहूदियों के घर में मेमने की मृत्यु हुई.
So death had visited every house.
इसलिए हम कहेंगे एक तरह से मिस्र देश के हर घर में मृत्यु आई थी.
But in the home of the Israelite, the firstborn still lived.
लेकिन इस्राएलियों के घर में पहलौठा अभी भी जीवित है.
Because he had died in the lamb.
क्योंकि उसकी मृत्यु उस मेमने में हुई थी जिसका बलिदान चढ़ाया गया था.
In the sight of God, when the lamb died,
परमेश्वर के सम्मुख जब मेमने की मृत्यु हुई,
the firstborn had died.
तो उस परिवार का पहलौठे का मृत्यु हो चुका है.
A sacrifice in his place.
और जो मेमना है उस पहलौठे के स्थान पर बलि चढ़ गया.
A very important principle.
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है.
And the death of the lamb on behalf of the firstborn.
और मेमने की मृत्यु जो पहलौठे के स्थान पे हुई थी,
is what had delivered the firstborn.
और उसी के द्वारा जो पहलौठा था वो बच गया था.
From the judgment of God, which otherwise must have fallen upon him.
और ये पहलौठा परमेश्वर के उस न्याय से बच गया जो उनके ऊपर गिरने वाला था.
And the Lord was looking back to that.
और प्रभु यीशु मसीह उस दृश्य को देख रहा था.
The nation every year was to look back to that.
और इज़राइल के लिए आवश्यक था कि हर वर्ष वो इस पर्व को मनाए.
It was a memorial.
ये एक स्मृति में था, स्मरण में था.
On Monday you had your Republic Day.
सोमवार को आपका गणतंत्र दिवस था.
It wasn't the day the Republic was established.
वो दिन नहीं था जिस दिन हम गणतंत्र बने थे.
It was the memorial of it.
वो हम उसके स्मरण में उस दिन को याद कर रहे थे.
So now the Lord is keeping a Passover.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी एक फसह को मना रहे हैं.
A memorial of a great event in the past.
और ये उस पिछले समयों में घटी उस महान घटना की स्मृति में थी.
He's looking backward.
वो पीछे की ओर देख रहा है.
Then he says,
फिर वो कहता है,
verse 16,
पद 16 को देखिए,
For I say unto you,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं,
I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God.
जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा.
Verse 17, And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves.
प्याला लेकर अब उसने धन्यवाद दिया तो कहा इसे लो और आपस में बांटो.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come.
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं दाखरस नहीं पीऊंगा.
So he's not only looking back, is he?
प्रभु यीशु मसीह ना केवल पीछे की ओर देख रहे हैं.
He is looking back.
वो पीछे की ओर देख रहे हैं.
That's the Passover.
वो फसह है.
But he's looking forward as well.
लेकिन अब वो आगे की ओर भी देख रहा है.
He's looking forward until all this is fulfilled in the kingdom.
और वो भविष्य की ओर देखकर कह रहा है कि ये सारे परमेश्वर के राज्य में पूरा होगा.
For now he says, I am not going to eat any more of the bread or drink of the fruit of the vine.
और मनुष्यों से वो कहता है कि अब इस रोटी से और इस दाखरस से मैं पीऊंगा नहीं.
No more bread or wine for me now.
अब से मेरे लिए रोटी और दाखरस की जरूरत नहीं.
The next time I'm going to eat bread and wine,
अगली बार जब मैं रोटी और दाखरस खाऊंगा,
it's going to be when the kingdom has come.
तब वो संभव होगा जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा.
Do you remember that verse we read in Genesis 14?
आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में हमने एक पद को पढ़ा था.
That verse where God displayed to Abraham something of the kingdom that was going to come.
जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के सामने जो परमेश्वर का राज्य आने वाला उसके बारे में दर्शन दिया था.
Five things all mentioned for the first time in that verse.
और उस पद में पांच बातों को हमने देखा था आज.
Do you remember the middle one?
आपको याद है उसके बीच में क्या था?
The first one was Melchizedek.
सबसे पहली बात मलकीसदेक.
The second was Salem.
दूसरा सालेम.
And the fourth was priesthood.
और तीसरा था याजक पद.
And the fifth was the Most High God.
और पांचवा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर.
Which one stands in the middle of them all? What's number three? Bread and wine.
बीच में दाख मधु और रोटी.
What's the Lord talking about here?
प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बाउल बोल रहे हैं?
Bread and wine.
रोटी और दाख मधु.
When?
कब?
In the kingdom.
परमेश्वर के राज्य में.
Isn't it a wonderful testimony to the grace of the Lord Jesus Christ? That the very evening before the nation crucified him.
क्या ये पर प्रभु यीशु मसीह की एक सुंदर गवाही नहीं कि जिस रात को वह इस्राएल ने उसे क्रूस पर चढ़ाया.
He was looking forward to the day when the nation would be restored and he would sit with them and have fellowship around bread and wine.
वो उस दिन के बारे में स्मरण कर रहा था जब वो राज्य वापस परमेश्वर अपनी प्रजाओं के चुन लेगा, बुलावट हो जाएगी और प्रभु उनके साथ बैठकर रोटी और दाखरस में से भाग लेगा.
That was going to be possible because the Passover was going to be fulfilled in him.
ये संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो फसह है प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने वाला था.
The Lamb of Exodus 12 was always looking forward to Christ.
मेमना जो निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं वो हमेशा यीशु मसीह की ओर देख रहा था.
Some 5 or 6 lakh of lambs were slain that night.
उस रात को मिस्र में कम से कम 6 लाख मेमनाओं की बलि चढ़ाई गई थी.
One for a house.
एक घर के लिए एक मेमना.
What did God say?
परमेश्वर ने क्या कहा?
You will kill them in the evening?
तुम उसे शाम को मारोगे?
No.
ऐसा कहा?
You will kill it in the evening.
तुम उसे शाम को मारोगे.
Some 5 or 6 lakh of lambs and God saw them as one.
और कुछ 5 या 6 लाख मेमने चढ़ाए गए लेकिन प्रभु ने उन सबको एक मेमने के समान देखा.
They were speaking of Christ.
वो यीशु मसीह के बारे में संबोधित किया गया.
Paul later would speak to the Corinthians and say, "For Christ, our Passover is slain for us."
क्योंकि इसीलिए फिर पौलुस ने इन बातों को देखकर कहा कि मसीह और फसह हमारे लिए बलि चढ़ गया था.
So the Lord is looking back.
इसलिए प्रभु पीछे की ओर देख रहे हैं.
That's the Passover.
और उसमें उस फसह को देख रहे हैं.
Now he's looking forward to the kingdom.
अब वो राज्य की ओर देख रहे हैं जो आगे होगा.
And the feature he is looking forward to of the kingdom is the fellowship he's going to enjoy around bread and wine.
और जिस बात की वो बड़ी इच्छा के साथ इंतजार कर रहा है प्रभु वो है अपने लोगों के साथ रोटी और दाखरस में सहभागिता.
You know there are scriptures, Isaiah speaks of them for example, of the day when Israel will beat its swords into plowshares.
हम जानते हैं वो भाग जहां पर यशायाह कहता है कि एक दिन इसराइल जो अपने तलवारों को हल के रूप में बदल देगा.
Its spears into pruning hooks.
और उसके भालों को छटनी करने वाले छुरी के समान कर देगा.
The plowshare to till the ground for the corn for the bread.
और ये जो हल है वो रोटी के लिए खेत को जोतने के लिए जिससे रोटी के गेहूं के दाने बो जाए उसको याद दिलाता है.
And the pruning hook is to trim the vine for the grapes for the wine.
और जो छटनी की जो छुरी है वो दाखरस की बारी में उपयोग किए जाने वाला है ताकि अंगूर के दाने वहां अच्छे से उग सके.
Bread and wine, they are the features of fellowship.
ये जो रोटी और दाखरस है ये संगति को दिखाती है.
The Lord Jesus said for me.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए.
No more until they are new in the kingdom.
अब से जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक ये नहीं.
But then in Luke's account.
लेकिन लूका जब हमें याद दिलाता है.
And only Luke records this.
और सिर्फ लूका ही इस घटना को लिखता है.
Verse number 20.
20वें पद को देखिए.
Likewise also the cup after supper.
जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा.
There were 4 cups associated with the Passover.
फसह के पर्व के साथ 4 कटोरों का संबंध है.
Cup of blessing.
एक आनंद का आशीष का कटोरा.
A cup of wrath.
और क्रोध का कटोरा.
A cup of salvation.
उद्धार का कटोरा.
And a cup of the kingdom.
और राज्य का कटोरा.
Now when they had taken all of those ritual cups.
और जब उन्होंने सारे प्यालों को ले लिया जिसको वो स्मरण करते थे.
When the Passover was finished.
और जब फसह का ये समय पूरा हुआ.
The Lord took a cup after supper.
प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद एक कटोरा लिया.
This is another cup.
ये एक दूसरा कटोरा है.
And he said.
और उसने इस प्रकार से कहा.
This cup is the new covenant in my blood which is shed for you.
यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है.
And so they finished that meal around the table.
और इस प्रकार उन्होंने उस मेज के चारों ओर भोजन को समाप्त किया.
And Mark records that after they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.
और मरकुस फिर लिखता है कि उन्होंने एक भजन को गाया और फिर चले गए.
The Lord Jesus was teaching his disciples something.
प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक शिक्षा दे रहे थे.
You see, they were really a faithful remnant of the nation.
निश्चित रूप से इस्राएल का एक चुनाव वह विश्वास योग्य एक भाग वे थे.
Where the nation had rejected their Messiah, they had received him.
जहां पर इस्राएल ने अपने मसीहा का तिरस्कार कर दिया था लेकिन इन्होंने उसे स्वीकार किया था.
But what they did not know.
लेकिन एक सत्य वो नहीं जानते थे.
Was as well as being the faithful remnant of the nation.
कि वो इसराइल के बीच में प्रभु के एक विश्वास योग्य चुने हुए लोग थे.
They were also going to be foundational members of the church.
इतना ही नहीं वो परमेश्वर की कलीसिया के नींव के पत्थर बन जाएंगे.
Now God said, as we keep the Passover, this is a memorial to the redeeming power of God.
प्रभु ने उनको बताया कि हम जब ये फसह रख रहे हैं, ये तुम्हारे छुटकारे के शक्ति या सामर्थ को दिखा रहा है.
Deliverance from the tyranny of Pharaoh.
फरौन के उस भयंकर बुराइयों से वो बचने जा रहे हैं.
In the future, in the millennium, he said.
भविष्य में जब हजार बरस का राज्य होगा.
I'll eat bread and wine again with the nation.
मैं इसराइल के साथ रोटी और दाखर से भाग लूंगा.
And it will be a great memorial.
और वो भी एक बड़ी स्मृति का समय हो गया.
To the deliverance of Israel from the tyranny of the man of sin.
और पाप के मनुष्य के उस भयंकर कोप से बचने के स्मृति में वो किया जाएगा.
All the time a memorial.
हर बार ये एक स्मृति के या स्मरण की वस्तु के रूप में हम देखते हैं.
A celebration.
एक 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 फसह एक त्योहार के समान हम देखते हैं.
But he said,
लेकिन वो कहता है,
the nation who has had the privilege of raising this memorial for God on earth,
यह देश जिसके लिए यह अवसर था कि प्रभु परमेश्वर के प्रभु के याद में यह स्मृति उस देश में मनाया जाए,
the nation of Israel is going to crucify me.
लेकिन इसराइल देश इसराइल की प्रजा मुझे क्रूस पर चढ़ाएगी.
So that privilege of maintaining a memorial to God's redeeming power.
इसलिए परमेश्वर के छुटकारे के सामर्थ्य की स्मृति में जो पर्व मनाया जाएगा,
that privilege is going to be taken away from them.
वो अधिकार वो अनुग्रह का भाग इसराइल से लिया जाएगा.
And they're not going to have it again until they are restored in the millennium.
और जब तक वो हजार बरस के उस राज्य में जब तक वो वापस बुला लिए नहीं जाएंगे.
So in the meantime,
इस बीच में
that privilege is going to be given to the church.
ये जो अवसर है, ये जो भाग्य अवस्था है, ये कलीसिया को दिया जाएगा.
And the church will have the memorial responsibility to the redeeming power of God.
और कलीसिया को परमेश्वर के छुटकारे के सामर्थ्य की स्मृति या स्मरण रखने का अधिकार दिया जाएगा.
Tremendous things the Lord Jesus did in Luke 22.
प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में बड़े महत्वपूर्ण कामों को किया है.
Now that which the Lord Jesus did with his disciples in Luke 22.
अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में जो काम को किया है.
We are then given the doctrine of it in the First Corinthian epistle.
उसके उपदेश सत्यों को हम पहला कुरिन्थियों में पाते हैं.
And in 1 Corinthians 11,
पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में,
we have the New Testament doctrine.
वहां पर नए नियम के सिद्धांत को इस संदर्भ में देखते हैं.
About that memorial that the Lord Jesus gave to the church in the upper room.
उस ऊपरी कक्ष में प्रभु यीशु मसीह ने उस स्मृति चिन्ह को दिखाया है. उसके एक उपदेश सत्यों को हम यहां पर पाते हैं.
And the title given to it in 1 Corinthians 11 verse 20 is the Lord's Supper.
और पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 20वें पद में उसको प्रभु भोज करके कहा गया है.
We can see why that title is given to it because that's where it originated.
हम जानते हैं इसका नाम इस प्रकार क्यों किया कहा गया, क्योंकि इसका आरंभ ऐसा हुआ था.
That final supper that the Lord Jesus had with his disciples.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज अपने सेवकों के साथ अपने शिष्यों के साथ मनाया था.
That's where it began.
और वहां से ये शुरुआत हुई.
And we continue it.
और हम आज भी उस काम को करते आ रहे हैं.
Not the Passover.
हम फसह को नहीं मना रहे हैं.
That finished when Christ died.
वो यीशु के मृत्यु के साथ प्रभु के मृत्यु के साथ वो समाप्त हो गया.
But the truth of the cup after supper, something new.
लेकिन हम जानते हैं कि उस भोज के बाद उसने जो कटोरा का उठाया था जो कुछ नया था.
It was linked with the Passover.
वो फसह के साथ जुड़ा हुआ था.
But it wasn't the Passover.
लेकिन वो फसह का त्योहार पर्व नहीं था.
It was something different.
वो कुछ अलग था उससे.
And now we have the doctrine of that in 1 Corinthians chapter 11.
और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में उसके उपदेश सत्यों को हम पाते हैं.
Now before we look at it, I want to show you if I can the difference between the Lord's table in 1 Corinthians 10 and the Lord's Supper in 1 Corinthians 11.
इसके पहले मैं आपको प्रभु प्रभु का जो मेज है जो पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में है और प्रभु भोज जो पहले कुरिन्थियों 11वें अध्याय में उसके बीच में फर्क बताना चाहूंगा.
And you might think to yourself, well, is this going to be about splitting hairs, differences which are not important.
आप सोच सकते हैं ये क्या इतनी बड़ी अंतर है जिसके बारे में हमें इतना माथा पच्ची करनी है.
Well, remember we discussed the day of Christ and the day of the Lord.
लेकिन आपको याद होगा हमने विचार किया था परमेश्वर के शास्त्र के प्रभु का दिन और मसीह का दिन.
That wasn't splitting hairs, was it?
वो दोनों के फर्क को जानकर हमें मालूम है कि वो बहुत उसमें मेहनत मशक्कत जरूरत है.
A very important distinction between the two.
उन दोनों शब्दों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर अंतर को हम पाते हैं.
And you brethren, you have responsibility in your home assemblies.
और भाइयों आपको आपकी स्थानीय कलीसिया में विशेष जिम्मेदारी है.
So now we look at this truth. We'll look at 1 Corinthians 10 first.
इसलिए जब हम इन सत्यों को फर्क को अंतर को समझने की कोशिश करेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय को देखें.
And he begins this section of the epistle in chapter 8 and verse 1.
और इस भाग की शुरुआत वास्तविक रूप से 8वें अध्याय के पहले पद में शुरू होती है.
Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge.
मूर्तियों के लिए बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है.
Now that chapter 8 verse 1 is where the section begins.
और इस संदर्भ में जिस बात पर हम विचार कर रहे हैं वो 8वें अध्याय उसके पहले पद से शुरू होती है.
And it goes to the end of chapter 10.
और 10वें अध्याय में आकर वो समाप्त होती है.
Chapters 8, 9 and 10.
अध्याय 8, 9 और 10.
All about the behavior of the believers in the Corinthian assembly in relation to idolatry and idols.
वहां पर कुलसियों के विश्वासियों का मूर्ति पूजा या मूर्तियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में विचार कर रहा था.
And some had very big doubts about ever eating any meat that had been offered to idols.
और कुछ लोगों के पास ऐसी बड़े समस्या थी कि मूर्तियों के सामने चढ़ाए गए चीजों को हम खा सकते हैं कि नहीं.
And other believers who said, well, we've got more knowledge.
और कुछ लोग इस प्रकार कुछ विश्वासी ऐसे कह रहे थे हमें इसका काफी ज्ञान है.
They said it's only meat.
ये तो सिर्फ एक भोजन है.
That idol is just an idol. That's all it is. It's a piece of stone. It's a piece of wood.
ये जो मूर्ति है सिर्फ एक पत्थर है लकड़ी का टुकड़ा है.
So if the meat that has once been offered to the idol,
इसलिए जो भोजन मूर्तियों के सामने रखा गया है,
and the idol hasn't eaten it because it's only an idol,
और मूर्ति तो उससे खा नहीं पाया वो तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है.
That meat which is then taken and sold in the shambles in the marketplace,
और ये जो भोजन वहां से वस्तु वहां से लेकर बाजारों में बेचा जाता है,
well, that meat is usually cheaper than the fresh stuff.
वो खरीदने से सस्ते में मिलता है दुकान में फ्रेश अच्छा वाला लेने से भी.
So if I buy that and eat it,
अगर मैं बाजारों से उस चीज उस भोज को लेकर खाता हूं,
the fact that it's been through the idol's temple, that doesn't matter.
कि ये मूर्तियों के मंदिर में रखा गया था फिर दुकानों में लाकर बेचा जा रहा है इससे मेरा कोई मतलब नहीं.
And there was division amongst the believers over this.
इसलिए कुरिन्थियों के विश्वासियों के बीच में इस संबंध में वाद विवाद हो गया.
What do we do?
अब क्या करें?
Do we eat? Do we not eat?
क्या हम उसको खरीद के खा सकते हैं या नहीं?
Is the food contaminated or is it not?
क्या ये जो 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 भोजन पदार्थ हैं ये बुरा गलत हो गया है बुरा हो गया है?
So Paul starts to teach them about this.
और इसलिए प्रेरित पौलुस उनको इसके बारे में शिक्षा दे रहा है.
He's going to make this very important point to them.
एक बहुत बड़े सत्य को उनके सामने ला रहा है.
That if you eat meat which is associated with the idol,
कि अगर तुम उस भोजन वस्तु को खाओगे जिनका संबंध मूर्तियों के साथ है,
इट एक्चुअली गोज फर्दर बैक देन दैट,
वो उससे भी कुछ कदम पीछे की ओर ले जाता है हमें.
दैट मीट इज एसोसिएटेड विद द अल्टर बिहाइंड द आइडल.
ये भोजन वस्तु का संबंध उस मूर्ति के पीछे जो वेदी है उसके साथ है.
बिहाइंड द आइडल इज अ डीमन.
उस मूर्ति के पीछे एक दुष्टात्मा है.
Yes, the meat is only meat.
हाँ जो भोजन वस्तु है तो साधारण सा भोजन का वस्तु है.
But look at the associations, look at the connections with it.
लेकिन देखिए वो जहां अर्पण किया गया उसके साथ जो संबंध उनको देखिए.
When you eat something, he says, you're having fellowship.
वो कहता है कि जब तुम खा रहे हो तो इसका मतलब तुम वहां संगति भी रख रहे हो.
We have eaten around those tables this evening.
और हम उन मेजों के चारों ओर बैठ के खा रहे थे.
Fellowship one with the other.
एक दूसरों के साथ संगति रख रहे थे.
So he says, when you eat, it is an act of fellowship.
वो कहता है पौलुस कहता है कि जब तुम उस वस्तु को खाते हो तो तुम एक संगति के दृश्य को दिखा रहे हो.
If that meat is associated with the idol,
अगर वो भोजन वस्तु एक मूर्ति के साथ संबंध रखता है,
you're having fellowship with the idol.
तो तुम्हारी संगति मूर्तियों के साथ हो गई है.
If behind the idol is a demon,
अगर उस मूर्ति के पीछे एक शैतान की शक्ति है,
you're having fellowship with the demon.
तो तुम उन शैतान की शक्ति के साथ संबंध रख रहे हो.
And he comes to this conclusion.
और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है.
And it's there in verse 21 of chapter 10.
और 10वें अध्याय के 21वें पद में वो हम देखते हैं.
Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of demons.
तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों से नहीं पी सकते. तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते.
So now he's using the term the Lord's table to contrast with the table of demons.
इसलिए अब पौलुस प्रभु का मेज इस बात को लाता है ताकि दुष्ट आत्माओं की जो मेज है उसके बीच के अंतर को समझा सके.
And notice he doesn't say to them, you must not.
लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वो यहां ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें नहीं करना है.
He said you cannot.
वो कहता तुमको बिल्कुल नहीं करना है.
It's not possible.
ये असंभव है ही नहीं.
Now he's saying it's not possible from the viewpoint of what has happened to the Christian.
वो इसलिए कहता है कि ऐसा एक संगति असंभव है इस क्योंकि एक मसीह के संदर्भ में इस बात को बताना चाहता है.
What has happened?
क्या हुआ एक मसीह के जीवन में?
Well, now at the beginning of the chapter, he's taken them back to a picture, an illustration.
इसलिए 10वें अध्याय के आरंभ में वो उनके सामने एक दृष्टांत रखता है.
And we know it is because verse 11 tells us.
और पद 11 में हम पढ़ते हैं.
All these things happened unto Israel for examples.
ये बातें उन पर यानी इज़राइल पर उदाहरण स्वरूप हुई है.
And they are written for our admonition, for our teaching.
और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है.
So now the previous 10 verses.
इसलिए पहले के 10 पद को अगर हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक.
The first 10 verses of chapter 10.
10वें अध्याय के 1 से लेकर 10 तक.
He is quoting them so that we have a picture that is going to teach us something upon whom the ends of the age are come.
वो कुछ सत्यों को हमारे सामने ला रहा है पुरानी बातों को लेकर ताकि अंत के दिनों के कई सत्य हमारे सामने खुलकर आ जाए.
He takes them back to Israel's days.
वो उन्हें इस्राएल के पूर्व दिनों की ओर ले जाता है.
And he said, now, you must remember, you mustn't be ignorant of the fact.
वो कहता है कि भाइयों तुम इन सत्यों के बारे में अनभिज्ञ ना रहो.
That all our fathers passed through the Red Sea.
कि हमारे सभी पूर्वज बादल की अगुवाई समुद्र के बीच से पार हुए.
He's not taking them back to Passover.
वो उन्हें फसा के पास नहीं ले गया.
He's taking them back to the crossing of the Red Sea.
वो उन्हें समुद्र लाल समुद्र के पार करने के विषय में ले गया.
And how that they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea.
और वो कहता है कि कैसे बादलों में और सब बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया.
And when they came out,
और जब वे बाहर आए,
they ate and they drank.
उन्होंने खाया और वो पिए.
All right, there's the picture.
और देखिए वो चित्र यहां पर है.
Now he's saying,
अब वो कहता है,
what is the teaching of that?
इसका क्या अर्थ है?
When Israel went through the Red Sea,
जब इस्राएल लाल समुद्र से होकर गुजरा,
and the Red Sea swallowed up Pharaoh and his army,
और लाल समुद्र ने फरौन और उसकी सेना को निगल लिया,
Israel were forever cut off from ever going back into Egypt.
इस्राएल हमेशा के लिए मिस्र में वापस जाए इस बात वहां पर कट गई है, बंद हो गई.
They were on the other side now.
अब वो उस लाल समुद्र के दूसरे ओर है.
The Red Sea had become a tomb of the one who had been their tyrant, who had them under his dominion.
और लाल समुद्र उन लोगों के लिए एक कब्र बन गया जो आज तक इस्राएल को सता रहा था.
They now had a new master.
अब उनका एक नया स्वामी है.
It was represented in Moses.
और वो मूसा में दिखाई दे रहा है.
And going through the Red Sea,
और लाल समुद्र से जब वे गुजरे,
finished the old life,
और पुराने जीवन वहां समाप्त हो गए,
and it began a new one.
अब उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत.
That's what baptism is about.
यही है बपतिस्मा.
We turn to Romans chapter 6.
हम रोमियों की पत्री 6वें अध्याय में जाएंगे.
And we are told that we, as many of us are baptized, were baptized into his death.
हम पढ़ते हैं कि हम में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु में सहभागी हुए हैं।
That day Israel died to Egypt.
और उस दिन इज़राइल मिस्र के संबंध में मर गया।
And Egypt died to them.
और मिस्र इज़राइलियों के लिए मर गया।
Everything ahead was new.
और अब जो कुछ आगे है सामने है सब कुछ नया।
That's the illustration that Paul takes in 1 Corinthians 10.
Paulus इसी दृष्टांत को उठाते हुए उनको समझाता है।
So now Israel coming out of Egypt was in two stages.
अब इसराइल जब मिस्र से छुड़ाया गया वो दो क्रम में हुआ था।
Both very significant.
और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है।
In the death of the lamb for them in Exodus 12.
निर्गमन के 12वें अध्याय में जब मेमने की मृत्यु हुई
they were delivered from the judgment of God.
वो परमेश्वर के न्याय से बच गए।
But when they woke up in the morning,
और जब वो सुबह उठे
when the new day dawned,
जब नया दिन आया
where were they?
वो कहां थे?
They were still in Egypt.
वो तब भी मिस्र में ही थे।
Still in the land of slavery.
अभी भी गुलामी के देश में ही थे।
Still under the dominion of Pharaoh.
अभी भी फरौन के अधीन थे।
So they weren't yet fully delivered.
अभी तक उनका पूर्ण छुटकारा नहीं हुआ था।
Delivered from divine judgment, yes.
हाँ, परमेश्वर के न्याय से ईश्वरीय न्याय से बच गए, ये सत्य है।
But not yet delivered from the dominion of their slavery.
लेकिन गुलामी से अभी तक उनको छुटकारा नहीं मिला है।
That was done when God brought them through the Red Sea.
वो तब संभव हुआ जब परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र से लेकर वहां आए।
In the Red Sea,
लाल समुद्र में,
it wasn't the matter of the death of the lamb for them.
मेमने की मृत्यु का संबंध नहीं था.
But they had died to Egypt.
लेकिन वहाँ पर वो मिस्र के लिए मर गए.
They had come through the grave.
वो कब्र से होकर बाहर आ रहे हैं.
Now let's go back to the Roman epistle.
आइए हम रोमियो की पत्री में वापस जाएंगे.
Put your hand up if you're a gospel preacher.
अगर आप एक सुसमाचार के प्रचारक हैं तो अपने हाथों को ऊपर रखें।
Who preaches the gospel, please?
कौन सुसमाचार का प्रचार करता है जरा हाथ ऊपर उठाएं।
Just about all of you? Okay. If I sat down with you,
अगर मैं आपके साथ बैठ गया,
and I said to you, now brethren, take me through the Roman epistle.
भाइयों मुझे आप रोमियो की पत्री में से होकर ले जाइए।
Take me through the doctrine of the gospel.
वहां पर सुसमाचार के उपदेश सत्य में मुझे लेकर जाइए।
Could you do that?
क्या आप कर सकते हैं?
What is the difference between Romans 1 to 5 verse 11?
रोमियो की पत्री पहला अध्याय से लेकर 5 उसके 11 तक
and 5 verse 12 through to the end of chapter 8.
और 5 के उसके 12वें पद से लेकर उस रोमियो की पत्री के अंतिम तक इन दोनों में क्या अंतर है? क्या फर्क है?
What's the difference in those sections?
इन दोनों भागों में क्या अंतर है?
Do you know?
आपको मालूम है?
Now you need to know.
आपको जानना आवश्यक है।
If you're going to preach the gospel, you have to know the doctrine of the gospel.
अगर आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो सुसमाचार के उपदेश सत्य को जानना आवश्यक है।
The epistle divides into three sections.
हम जानते हैं रोमियो की पत्री तीन भागों में बटा हुआ है।
Chapters 1 to 8.
पहला अध्याय से लेकर आठवें पद तक
The doctrine of the gospel.
आठवें अध्याय तक सुसमाचार का उपदेश को पाते हैं।
Chapters 12 to 16.
और 12 से लेकर 16 तक
The practical behavior that should come out of An appreciation of the doctrine.
और ये उपदेश सत्यों को जानने के कारण एक विश्वासी के जीवन में जो प्रायोगिक व्यवहार में बदलाव है उसको दिखना चाहिए.
But there's 9, 10 and 11 as well.
लेकिन उसके बीच में 9, 10 और 11 अध्याय भी हैं.
Why are they there?
वो यहाँ पर क्यों हैं?
They are there because the reader of chapters 1 to 8
वो वहां पर इसलिए क्योंकि जो अध्याय 1 से लेकर 8 तक जो व्यक्ति उसको पढ़ता है
could say now if God has concluded all under sin equally,
और परमेश्वर ने सारी बातों को पाप के अधीन बराबर रूप से रखा है,
if there is no difference between Jew and Gentile,
अगर यहूदी और यूनानी के बीच में अन्य जाति के बीच में कोई फर्क नहीं है,
if all are justified through faith in the blood of Christ,
अगर हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा निर्दोष और धर्मी ठहराए गए हैं,
then what about all God's promises to the Jew?
तो यहूदियों के संबंध में परमेश्वर ने इतने सारे वादों को किया, वाचाओं को किया, उसका क्या होगा?
All those Old Testament promises, those covenants, are they finished with?
पुराने नियम में जितने वाचाओं को प्रभु ने अपने प्रजा के साथ किया, क्या वो सब ऐसे ही खत्म हो गए?
So Paul takes chapters 9, 10 and 11 to show them.
इससे फिर पौलुस अध्याय 9, 10 और 11 को लेता है ताकि उन्हें कुछ बातों को सिखाए।
God's dealings with Israel in the past, chapter 9.
परमेश्वर ने इसराइल के साथ कैसे भूतकाल में व्यवहार किया अध्याय 9 में
How he's dealing with Israel in the present, chapter 10.
अध्याय 10 में वर्तमान काल में इसराइल के साथ वो क्या कैसा व्यवहार कर रहा है
and how he will deal with Israel in the future in chapter 11.
और 11वें अध्याय में आते हैं तो भविष्य में परमेश्वर इसराइल के साथ कैसा पेश आएगा या व्यवहार करेगा वहां लिखा हुआ है.
The first section, chapters 1 to 8,
और अध्याय 1 से लेकर 8 तक
is broadly split into two sections.
वो भी दो भागों में बटा हुआ है.
The first one from chapter 1 verse 1,
अध्याय 1 उसके 1 पद से
to 5 verse 11.
पांचवें अध्याय के 11वें पद तक एक भाग.
Now when you read through that section again,
जब आप उस भाग को ध्यान से पढ़ेंगे,
you will see that Paul is talking about sins, the plural. He's talking about the deeds.
वहां पर पौलुस पापों के बारे में बहुवचन में पाप के जो कृत्य हैं कार्य उनके बारे में कह रहा है.
But in the second section,
लेकिन दूसरा भाग जो शुरू होता है,
he's not talking about sins,
वो पापों के बारे में बहुवचन में नहीं कह रहा.
He's talking about sin,
वो पाप के बारे में कह रहा है.
Sin as the sphere of domination and tyranny that men are under.
पाप वो एक ऐसा एक माहौल या अवस्था जिसके भय में हर एक मानव जाति है.
In the first section, he will show us that men are responsible for the sins they commit.
और पहले भाग में वो कह रहा है कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए सारे पाप के कृत्यों के प्रति जिम्मेदार है.
In the second section, he will show us that Adam is responsible for us being sinners.
दूसरे भाग में वो इस सत्य को लाता है कि हम पापी हैं, इसके पीछे जिम्मेदारी आदम को लेना है.
In the first section, he speaks about wrath.
पहले भाग में वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करता है.
In the second section, he doesn't.
लेकिन दूसरे भाग में वो इसके बारे में नहीं कहता.
So now these things teach us in the Roman epistle that a man has got two problems.
इसलिए रोमियो की पत्री के द्वारा ये सत्य एक मनुष्य के संदर्भ में बताता है कि मनुष्य के जीवन में जो दो समस्याएं हैं.
He has committed sins.
उसने बहुत से पाप किए हैं.
Offenses against God.
परमेश्वर के विरोध में बहुत से बुराइयों को किए.
God is righteous and must judge them.
और परमेश्वर धर्मी है और उनका न्याय करेगा.
So that man deserves the wrath and the judgment of God.
इसलिए उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय का गिरना आवश्यक है.
Judgment because of his sins.
क्यों न्याय का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसने पाप किए हैं.
He then goes on to show us.
और फिर वो आगे बढ़ता हमें दिखाता है.
That by virtue of the death of Christ for us.
कि प्रभु यीशु मसीह के हमारे क्रूस के मृत्यु के हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु के द्वारा.
Through faith we can have those sins forgiven.
विश्वास के द्वारा हमारे वो पाप माफ हो सकते हैं.
It's the truth of the Passover.
और ये फसह के सत्य को हमें याद दिलाता है.
A substitutionary sacrifice that delivers a man from the judgment of God.
बदले में होने वाले इस बलिदान के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के न्याय से बच जाता है.
But then he says, there is still a problem because this man is under the dominion of sin.
फिर वो कहता है कि अभी समस्या और है क्योंकि यह मनुष्य पाप के उस बादल के नीचे है.
Sin is his master.
और पाप उसका मालिक है.
It's just like Israel being under the tyranny of Pharaoh.
वो इस प्रकार से उसका सदृश्य हम देख सकते हैं जैसा इज़राइल फरौन के उस कठोर शासन के अधीन था.
Now you don't read of the wrath of God in that section.
लेकिन उस भाग में एक विशेष बात हम देखते हैं, परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम नहीं देखते.
Listen to this carefully, please.
इस बात पर बड़ा ध्यान दे.
God never judges a man for being a sinner.
परमेश्वर एक मनुष्य का इसलिए न्याय नहीं करता क्योंकि वो पापी है.
It's not my fault that I'm a sinner.
ये मेरी गलती नहीं है कि मैं एक पापी हूं.
It's not your fault that you're a sinner.
ये आपकी गलती नहीं है कि आप एक पापी हैं.
It was Adam's fault.
वो आदम की गलती थी.
Because by one man sin entered into the world and death by sin.
क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई.
So death passed upon all men for that all men sin when Adam did.
इसलिए मृत्यु हर मानव में हर व्यक्ति में फैल गया और सब मरते हैं क्योंकि आदम ने पाप किया.
Don't tell men and women that God is going to judge them for being sinners. That's wrong.
कभी भी किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते समय यह ना कहे कि क्योंकि तुम पापी हो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा.
God will judge men on account of the sins that they have committed.
परमेश्वर मनुष्यों का न्याय इस आधार पर करेगा कि उन्होंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं.
Now let me show you why this is important.
अब मैं आपको बताता हूं ये महत्वपूर्ण क्यों है.
What I'm about to describe,
जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं,
may apply to some brother or his family here.
हो सकता है वो कुछ भाई और उनके परिवारों से संबंध रख सकता है.
If it does, forgive me, I don't want to be insensitive.
अगर ऐसा अगर कुछ होता है तो आप मुझे माफ कर दे, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता.
Sometimes babies die.
कई बार बच्चे मर जाते हैं.
Infants die, don't they?
आपको मालूम है कभी छोटे बच्चे मर जाते हैं.
Why?
क्यों?
Babies die because they are subject to death.
बच्चे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो मृत्यु के अधीन है.
That means death can lay a claim upon them.
इसका यह मतलब हुआ कि मृत्यु उन पर अपना कब्जा को दिखा सकता है.
Why can death do that?
मृत्यु ऐसा क्यों कर पा रहा है?
Because they're sinners.
क्योंकि वो पापी हैं.
Why are they sinners?
वो पापी क्यों हैं?
Because Adam sinned.
क्योंकि आदम ने पाप किया.
When Adam brought sin into the world, death came with it.
जब आदम पाप को इस पृथ्वी पर ले आया तो मृत्यु उसके साथ आई थी.
The baby can die because it's a sinner because of Adam.
ये बच्चे की मृत्यु इसलिए संभव है क्योंकि आदम के कारण आदम का पाप उसमें है.
Does God send that baby to hell?
क्या परमेश्वर उस बच्चे को नरक में भेज देगा?
No.
नहीं.
Of course not.
कभी नहीं.
There's no wrath of God upon that baby for being a sinner.
क्योंकि वो पापी है इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है ही नहीं.
Not the baby's fault.
वो उस बच्चे का गलती नहीं था.
Baby doesn't even know it's a sinner.
वो बच्चे को मालूम ही नहीं कि वो पापी है.
God is not unjust.
परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है.
Being a sinner makes the baby capable of death.
एक पापी होने के कारण वो बच्चा मृत्यु के अधीन जा सकता है.
But not subject to the wrath of God.
लेकिन परमेश्वर के क्रोध के अधीन वो कभी नहीं होगा.
I once walked around a graveyard in the UK.
मैं एक बार UK में एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था.
And I found a stone.
तब मैंने एक छोटे से पत्थर.
Very old stone.
एक बहुत पुराना पत्थर.
And there were four babies buried underneath it.
और उसमें चार बच्चे दफनाए गए थे.
And there was a poem on the stone, which I'm not going to try and repeat because it would be too difficult for our brother, simply because it's in Old English.
उसके ऊपर एक poem लिखा हुआ था, एक कविता लिखी हुई थी, जो मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसका अनुवाद करना मुश्किल हो जाएगा.
But it simply asked the question.
वहाँ पर सिर्फ एक सवाल पूछा गया था.
It said, underneath this stone, four babies are sleeping.
उसमें लिखा हुआ था कि इन पत्थरों के नीचे चार बच्चे पड़े हुए हैं.
Why are they here and where are they now?
वो यहां पर क्यों है, वहां क्यों नहीं है?
And it said if death is by sin,
और कहा गया अगर मृत्यु पाप के कारण है,
then they must have sinned because they're here.
तो उन्होंने पाप किया होगा तभी तो वो यहां पर हैं.
If the way to heaven is good works,
अगर स्वर्ग का मार्ग अच्छे कार्यों के द्वारा है,
then they can't be in heaven.
तब वो स्वर्ग नहीं पहुंच सकते.
They say, what answers the question?
तो फिर इस सवाल का उत्तर क्या है?
We'll turn to the Bible's sacred page.
हम उसमें लिखा हुआ था, हम बाइबल के पवित्र पन्नों को खोल कर देखें.
They died because Adam sinned.
वो मरे क्योंकि आदम ने पाप किया.
And they live because Jesus died.
और वो जिएंगे क्योंकि यीशु उनके लिए मर गया.
There's the answer, brethren.
ये है भाइयों उत्तर.
They died because Adam sinned.
वो मर गए क्योंकि आदम ने पाप किया था.
Praise God, they live because Jesus died.
प्रभु की स्तुति हो, वो जीवित हैं क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए मारा गया.
It's important to know the difference, isn't it?
इसलिए ये फर्क जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है.
God doesn't judge men for being sinners.
परमेश्वर एक व्यक्ति का न्याय इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पापी है.
But you see, it wasn't enough when I got saved to simply be delivered from the penalty of my sins.
लेकिन आपको मालूम है कि जब मेरा उद्धार हुआ था, पाप की जो सजा है उसमें से बच जाना ही मेरे लिए काफी नहीं.
I confessed them.
मैंने उसे पश्चाताप के साथ स्वीकार किया.
And God forgave them on the basis of the blood of Christ.
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ने मेरे धर्मों को माफ कर
दिया. And I will never face the judgment of God for my sins.
इसलिए अब मेरे पापों के लिए मैं कभी भी प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा ना होऊंगा.
Because Christ died for me.
क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया.
But I needed still to be delivered from the power of sin as a master.
लेकिन मेरे लिए आवश्यक है कि पाप के शक्ति से मुझे छुटकारा मिले जो स्वामी के रूप में मेरे ऊपर चला रहा है.
And Romans chapter 6 tells me how that was done.
और रोमियो की पत्री उसके छठवें अध्याय में यह बताया गया कि यह कैसे हुआ.
Not by Christ's death for me.
यीशु मसीह के मेरे लिए मृत्यु के द्वारा नहीं.
But my death with Christ.
लेकिन यीशु मसीह के साथ मेरी मृत्यु के द्वारा.
When Christ died, I died.
जब यीशु मसीह मारे गए मैं भी मर गया.
And my baptism signified that.
और मेरा बपतिस्मा उसी का एक चित्र है.
Buried with Christ.
यीशु के साथ गाड़ा गया.
Raised again.
और मसीह के साथ उठाया गया.
To walk in newness of life.
ताकि जीवन के नएपन में मैं चल सकूं.
Christ died.
मसीह मारा गया.
I died.
मैं भी मर गया.
Christ's death for me pictured in the Passover.
मसीह की मृत्यु मेरे लिए फसरा में दिखाई देती है.
My death with Christ pictured in Israel coming through the Red Sea.
मसीह के साथ मेरी मृत्यु इसराइल उस लाल समुद्र के बीच से जो निकल गया उसमें दिखाई देता है.
That's how God delivered them from the land of their slavery and bondage.
ऐसा परमेश्वर ने उनके गुलामी के देश में से छुड़ाकर बाहर ले आया.
They came through the grave of their enemy.
वो अपने शत्रु के कब्र में से निकलकर बाहर आए.
What a wonderful redeemer.
कितना अच्छा उद्धार करता है हमारा.
Now appealing to that picture,
और उसी चित्र को सादृश्य बनाते हुए
Paul says to the Corinthians,
पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है,
You have died to that old system.
तुम उन पुराने विधियों के लिए मर चुके हो.
Now you might think that the idol is nothing and the altar is nothing and the meat is nothing.
तुम सोचते होंगे कि ये मूर्ति का क्या कोई मतलब नहीं है, इस वेदी का कोई मतलब नहीं है, भोज का कोई मतलब नहीं है.
But that was all part of the system in which once you lived and now you have died to it.
लेकिन तुम जान लो कि एक समय ये सारी बातों के अधीन तुम थे और अब उसके लिए मर गए हो.
You once had your fellowship at the table of demons.
पहले तुम्हारी जो संगति दुष्टात्माओं के मेज के साथ था.
Now he says you have your fellowship at the table of the Lord.
लेकिन अब वो कहता है कि अब तुम्हारी संगति प्रभु के मेज के साथ है.
Not one day a week.
सप्ताह में एक दिन नहीं.
Every day of the week.
ये हर दिन होता है.
Every moment of every day.
हमारे जीवन के हर क्षण में ये संगति होती है.
You remember the story of Mephibosheth?
आपको मेफीबोशेथ की कहानी याद होगी.
How David brought him into his house when he could legally have slain him.
कैसे दाऊद ने उसे अपने मेज के पास लिया.
And Mephibosheth sat at the king's table continually.
और वहां ऐसा लिखा हुआ है, मेफीबोशेथ राजा के मेज से निरंतर लगातार बैठा रहा.
That's the truth of the Lord's table, brethren.
और प्रभु का मेज का सत्य यही है.
It is the place where the believer is provided for. He gets his spiritual food from it.
ये वो स्थान है जहां पर एक विश्वासी को कुछ मिलता है, यानी कि उसे आत्मिक भोजन प्राप्त होता है.
You see, he says in verse 18 of 1 Corinthians 10.
पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय उसके 18वें पद में वो कहता है.
Just look at Israel after the flesh.
जो इसराइल को जो शरीर के भाव से इसराइली उन पर ध्यान दो.
Look at this example.
इस उदाहरण को देखो.
Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar?
क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं?
If you eat of the sacrifice, you are a partaker of the altar upon which that sacrifice was made.
अगर तुम उस बलिदान को खाते हो तो तुम वेदी के साथ तुम्हारी संगति है.
Now he says, we feed upon Christ.
वो कहता है कि हम मसीह को खाते हैं.
He was the sacrifice.
वो हमारा बलिदान था.
And if we feed upon Christ, it associates us with the altar.
अगर हम मसीह का भोज करते हैं तो वो हमारी संगति उस वेदी के साथ होती है.
Which altar?
कौन सी वेदी?
Calvary.
कालवरी.
Calvary was the altar.
कालवरी वो वेदी था.
He says, my brethren in Corinth, you are forever associated with Calvary.
वो कहता है, कुरिन्थ के मेरे भाइयों, तुम्हारी संगति कालवरी के वेदी के साथ हो चुकी है.
You have been brought into one body.
तुम्हें एक शरीर में तुम जोड़ दिए गए हो.
Through the sacrificial work of Christ at Calvary.
वो यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस पर दिखाए गए उस बलिदान के द्वारा हुआ है.
That's why in verse 16 he speaks of the blood first and then the bread.
इसीलिए 16वें पद में वो लहू के बारे में पहले फिर कटोरे के बारे में कहता है.
That's what salvation has in view, the blood first and then the body.
और लहू और फिर रोटी, और उद्धार में इसी चीज को देखते हैं, पहले लहू फिर रोटी.
Through the blood of sacrifice now we're one body.
अब यीशु मसीह के लहू के उस बलिदान के द्वारा हम एक शरीर में जुड़ गए हैं.
Our fellowship is with Christ.
हमारी संगति मसीह के साथ है.
We feed upon him.
हम उसके भोज करते हैं.
We're associated with his altar of Calvary.
हम कालवरी के उसके वेदी के साथ हमारा संबंध है.
And you've died to everything else.
और हमारी मृत्यु सारी बातों के लिए हो गई है.
You see why he says in verse 21, अब, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons.
और इसीलिए वो कहता है, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते.
The man who drinks the cup of demons is dead as far as the sacrifice of Christ is concerned.
जो व्यक्ति दुष्टात्मा के इस भोज में शामिल होता है वो मसीह के उस बलिदान से दूर है, उसके लिए उसके प्रति मर गया है.
And the man who drinks the cup of Christ,
और जो मसीह के कटोरे को पीता है,
is dead as far as the cup of demons is concerned.
और जहां तक दुष्टात्मा के कटोरे से संबंध है उसके लिए वो मर चुका है.
You cannot have fellowship with both.
आप दोनों के साथ संगति रख नहीं सकते.
That's what he's teaching them in 1 Corinthians 10.
और पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में इसी सत्य को वो हमें सिखा रहा है.
Their association with Christ through his death for them and their death with him means that everything to do with the idols is finished.
उनके यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में सहभागी होने के कारण दुष्टात्माओं के और उसके वेदी और उस कटोरे के सारे संबंध टूट चुके हैं.
So then, let's just summarize that very quickly.
इसलिए जल्दी से मैं उसको संक्षिप्त रूप से खत्म कर दूं.
Tomorrow night, God willing, we're going to deal with 1 Corinthians 11.
और प्रभु अगर अवसर देता है तो कल रात को हम पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में से विचार करेंगे.
Because I want to speak to you about our relationship with angels, and I want to speak to you about what we're going to be doing in the millennium and things like that.
क्योंकि मैं आपसे हमारे स्वर्गदूतों के साथ क्या संबंध है और हजार बरस के जो हमारा राज्य होगा उसमें हम क्या करने जा रहे हैं उस विषय में मैं कल बात करूंगा.
So let me summarize 1 Corinthians 10.
इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के सारांश को मैं ले आऊं.
And the Lord's table.
और प्रभु के मेज के बारे में.
The Lord's table is about the provision of grace.
प्रभु का मेज अनुग्रह का जो दान है उसके बारे में हमें याद दिलाता है.
The food and the drink that we have spiritually as the result of the grace that has saved us.
और जो भोजन और कटोरा हम आत्मिक रूप से अनुभव करते हैं वो उसके उद्धार के अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है.
The Lord's table, the provision of grace.
प्रभु का मेज उसके अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ.
We will learn tomorrow night that the Lord's Supper is the proclamation of glory.
और हम देखेंगे जो प्रभु भोज है वो उसके महिमा का प्रचार का चिन्ह है.
The Lord's table is about the believer individually.
प्रभु का जो भोज है वो मेज है वो विश्वासी के व्यक्तिगत संबंध को बताता है.
The Lord's Supper is something we have collectively.
और प्रभु भोज जो है वो हम सामूहिक रूप से जो लेते हैं उस बात को बताता है.
The Lord's table shows that I have died with Christ.
प्रभु का मेज हमें यह स्मरण दिलाता है कि मैं मसीह के साथ मर गया हूं.
So at the Lord's table, with the Lord's table, I am showing forth my death.
प्रभु के मेज के साथ मैं अपनी मृत्यु को जोड़ता हूं.
But in the Lord's Supper, we are showing forth his death.
लेकिन जब हम उसके हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं.
In the Lord's table, I am identified with the body.
प्रभु के मेज में मैं शरीर के साथ मेरे संबंध को बताता हूं.
But in the Lord's Supper, then I am identified with the Lord as his body.
लेकिन प्रभु भोज में मैं प्रभु के साथ उसके शरीर का भाग के रूप में दिखाई देता हूं.
Because at the beginning of 1 Corinthians 11, it's going to talk about headship.
क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में जो सर का जो उचित स्थान है उसके बारे में हम देखते हैं.
He's the head.
वो हमारा सर है.
We're the body.
हम उसके शरीर हैं.
So it's not the truth of me being in the body. That's 1 Corinthians 10 and the Lord's table.
इसलिए वो सत्य नहीं कि मैं मसीह के शरीर में हूं.
But now in 1 Corinthians 11,
पहला कुरिन्थियों 11 में,
the body is setting forth the head.
और ये जो शरीर है वो सर को ऊंचा उठाते दिखाता है.
The Lord's table is continual.
प्रभु का जो मेज है वो आगे भी चलेगा.
The Lord's supper is once a week.
लेकिन प्रभु का भोज जो है वो हफ्ता में सप्ते में एक दिन होता है.
So they're not the same thing, are they?
ये दोनों एक नहीं है.
They are different things.
ये दोनों दो अलग बातें हैं.
And we're not making brethren at fault for a word. No, not at all.
और ये इन बातों में हम किसी की गलती उठाकर दिखाना नहीं चाहते.
But we do need to know the difference.
लेकिन सत्य या फर्क इन दोनों के अंतर को जानना हम में से हर एक के लिए जरूरत है.
So tonight we have thought about the Lord's table in 1 Corinthians 10.
इससे पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय से हमने प्रभु के मेज के बारे में देखा है.
Tomorrow night in the will of the Lord we'll think about the Lord's supper in 1 Corinthians 11.
और कल प्रभु अगर अनुमति देता है तो पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय से प्रभु भोज के संबंध में हम देखेंगे.
Thank you for your attention.
धन्यवाद आपने ध्यान से इन बात